लेने का कोई सवाल ही नहीं। तो इस घटियापन को दूर करना चाहिए, अपनी अखलाकी इस्लाह करनी चाहिए। हर वक्त एहसास जुर्म क्या चीज है, क्या ये नफ्सियाती बीमारी है? एहसास जुर्म से मुराद है कि हम सहाबा कराम की तरह कुरान पर और हुजूर के अहकाम पर अमल नहीं कर रहे, अपने आप को बेबस पाना कि हम बनना तो वैसा चाहते हैं मगर ऐसा कर नहीं पाते। इस एहसास से दिल हर वक्त परेशान रहता है, इस कैफियत का कैसे सामना किया जाए? बराए करम रहनुमाई करें। हर वक्त दिल खौफजदा रहता है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए रास्ते तलाश करना ना ही मशगला बन गया है। ये अपनी जगह एक बड़ा अच्छा महमूद जज्बा है, लेकिन इस जज्बे के साथ ये ख्याल रखिए कि अल्लाह ताला बहुत रहीम बहुत करीम है और अपने बंदों की रहनुमाई करते हैं। इसको खौफ या वहम का मसला नहीं बनाना चाहिए, जद्दोजहद का मसला बनाना चाहिए। और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी कोताहियां होंगी। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि तुमसे कोई गलती ना हो, ये कहते हैं कि अगर हो जाए तो मेरी तरफ लौट आओ। और ये भी कहा है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। तो आप खुदा से मायूस ना हो बल्कि पूरा खुदा पर भरोसा करके एतमाद के साथ इकदाम करें।
एक यूरोपियन फकीर है, उसने तहजीबों के बारे में लिखा है, तो आप तहजीबों का उसने जिक्र किया है, जैसे हिंदू है मुस्लिम है ईसाई है, तो उसमें यहूदियों का नहीं जिक्र किया। यहूदी एक अलग तहजीब है या ईसाइयों का हिस्सा है?
यहूदियत और ईसाइयत असल में एक ही चीज है, और तहजीबी लिहाज से क्योंकि यहूदी अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखते रहे हैं और उन्होंने माशरे में कोई उस तरह का किरदार अदा नहीं किया जिस तरह का किरदार मिसाल के तौर पर ईसाई तहजीब ने इख्तियार किया है, तो इस वजह से उसका अलग जिक्र करने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। ईसाई तहजीब की तो अपनी एक तारीख है और ये तारीख कमोबेश इस वक्त 2000 साल तक मौजूद हो चुकी है। इस दौरान में बहुत से इदारे वजूद में आए हैं, बहुत से अफकार वजूद में आए हैं, बहुत सी तहरीकें उनके अंदर उठी हैं और अब भी अपनी तहजीबी शनाख्त के साथ वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। यानी जरूरत का मतलब भी होता है कि ये आपको लाजमन चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी बेटी के ब्याहने के लिए पैसे रखे हुए, बच्चों की तालीम के लिए कोई पैसे रखे हुए, वो कारोबार कर रहा है और कारोबार की अपनी इन्वेस्टमेंट की बात जरूरतें होती हैं जिनके लिए आपको कुछ रुपया रखना पड़ता है, तो ये जरूरत का लफ्ज ही इसको बता देता है। यानी तायुशात के लिए जो पैसा नहीं रखा गया, जो महज रखने के लिए नहीं रखा गया, मुस्तकबिल के अंदेशों के लिए नहीं रखा गया, जरूरतों के लिए रखा गया, तो वो पैसा जो है इसका फैसला लोग अपने हालात के लिहाज से खुद कर लेते हैं। और जाहिर है कि इसका कोई मेयार मुकर्र नहीं किया जा सकता क्योंकि जरूरतें भी मुतफर्रक हैं और मुतनब्बे हैं और उनके हालात भी अलग अलग होते हैं, तो जरूरत का लफ्ज इसको खुद बयान कर देता है। यानी वो आपकी जरूरत है हकीकत में, ना कि आप अंदेशा है दूर दराज में उतला है। जरूरत को आदमी समझता है, कुछ सेहत की जरूरतें हैं, कुछ तालीम की जरूरतें हैं, कुछ बच्चों की जरूरतें हैं, इसी तरह कुछ कारोबार की जरूरत है।
मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नियमतों से नवाजा, बट हम रास्ते से हटे हुए हैं। बावजूद कोशिशों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल भी हैं, उलमाए कराम भी कोशिश करते हैं, बट 500-600 साल से कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। इसका सर कोई डायग्नोस्टिक एनालिसिस और इसके क्या सोल्यूशन है? इस तरह का हमारा भी वही हाल होगा जो जूस का हुआ, सिर्फ हमें टाइम ज्यादा मिल गया। क्या इसमें कसूर मेडिसिन का है, पोटेंसी का है, यूज ऑफ मेडिसिन का है, या लैक ऑफ एडियरेंस टू द टेनेट्स है, या तालीम का फुकदान है, टीचर अच्छे नहीं है? बता सकता हूँ
मुसलमानों के जवाल के मेरे नजदीक दो बुनियादी सबब है। एक ये कि उनके इल्म और अमल का महवर दूसरी तीसरी सदी के बाद कुरान नहीं रहा, और ये बिल्कुल एक हकीकत है। जिस आदमी की मुसलमानों की तारीख पर निगाह है वो इससे इनकार नहीं कर सकता। कुरान ना उनके इल्म का महवर बन सका ना उनके अमल का महवर बन सका। पहली 1.5-2 सदियां हैं जिसमें कुरान मजीद को यह हैसियत मुसलमानों के माशरे में हासिल हुई, उसके बाद कभी हासिल नहीं हो सकी। दूसरे ये कि मुसलमानों का जैसे ही एक बड़ी हुकूमत की सूरत में जहूर हुआ, तो बजाय इसके कि वो तबई या साइंसी उलूम की से दिलचस्पी लेते, उनकी दिलचस्पी का असल मरकज फलसफा और तसव्वुफ बन गया। उनके तमाम बड़े बड़े लोग और जहीन लोग इसी के माहिरीन हुए। और ये जो अब चंद साइंसदानों का जिक्र लोग करते हैं, तो असल में मगरब की साइंसी तरक्की से मुतासर होकर करते हैं, वरना अपने अपने जमाने में ये सब जिंदगी और मनत शुमार किए जाते थे। हुजूर की आमद से पेशतर वो कौन से आखिरी पैगंबर थे जिन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया? हुजूर से पहले सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की बेसत हुई है, तारीखी लिहाज से हमें यही मालूम है। اگر اسلام کا پیغام پہلے نبی بھی دیتے رہے تھے تو پھر یہ پیغام عرب کے لوگوں کے لیے اتنا نیا کیوں تھا کہ اس پر شدید رد عمل سامنے آیا؟ اس پیغام میں توحید پر بہت زور تھا اور عرب شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے رد عمل ہوا، باقی پیغام تو کوئی نیا نہیں تھا. حضرت ابراہیم کے دین ہی کو بیان کیا گیا تھا، حضرت ابراہیم ان کے ابو الآباد ہیں، چنانچہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں کوئی اجنبیت ان کو محسوس نہیں ہوئی. توحید میں چونکہ وہ غلطی پر تو ہوا. باخر دعوان الحمدللہ.